ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। साइप्रस और कनाडा की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद क्रोएशिया की राजधानी जगरेब पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक क्रोएशिया यात्रा के दौरान भारत और मध्य तथा दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस देश के बीच उच्च स्तरीय वार्ता होगी। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा है। इस दौरान श्री मोदी क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री आज शाम को क्रोएशिया के राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले क्रोएशियाई योद्धाओं के सम्मान में जगरेब में स्थित होमलैंड स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों के शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला द सिल्वा और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने कहा है कि भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और दोनों देशों को लोकतंत्र मजबूत करने के साथ साथ मानवता को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कैनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने कहा कि वे भारत और कनाडा के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं।
कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे।
विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों में स्थिरता लाने के लिए उच्चायुक्तों की शीघ्र बहाली से शुरू करते हुए कुछ कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने व्यापार, आपसी संपर्क और आम लोगों के बीच संबंधों के विषय में वरिष्ठ स्तर की चर्चा फिर से शुरू करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि दोनों नेताओं ने स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल बुनियादी ढांचे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खाद्य सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला के संबंध में सहयोग की संभावना पर विचार किया।
Discuss the importance of the India-Canada relationship, which is based on shared values, democracy and the rule of law, people-to-people contact and many other commonalities. The Prime Ministers agreed to take calibrated steps to restore stability to this very important relationship.
विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में आज देश के पहले पनडुब्बी रोधी शैलो वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान करेंगे। इस जहाज को पिछले महीने की 8 तारीख को नौसेना को सौंपा गया था। इसका नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित यह जहाज आत्मनिर्भर भारत पहल का प्रतीक है। मौसम विभाग ने मेघालय, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से सटे मैदानी इलाकों, झारखंड और ओडिशा में अलग अलग जगहों पर आज भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। अगले 2-3 दिन के दौरान बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने असम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। गृह मंत्रालय ने आज और कल के लिए राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय ने राज्य सरकार से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। विश्वनाथ और लखीमपुर जिलों के 10 गांवों में अब भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बारिश के बावजूद गर्मी और उमस की स्थिति बने रहने की उम्मीद है। देश के जूनियर कंपाउंड तीरंदाजों ने कल सिंगापुर में एशियाई कप लीग 2 में अपना दबदबा कायम रखते हुए पुरुष और महिला दोनों व्यक्तिगत स्पर्धाओं के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में शीर्ष तीरंदाज कुशल दलाल ने बांग्लादेश के हिमू बछार को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।